আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আজ হাম আপকে সামনে হযরত আশরাফুল মশাইখ আবু মুহাম্মদ শাহ সৈয়দ আহমদ আশরাফ আশরাফি আল জিলানি নবর আল্লাহ মরকদহু কে হজ কে ওয়াকিয়াত বয়ান করেঙ্গে। হযরত আশরাফুল মশাইখ রহমতুল্লাহ আলাইহি নে 17 হজ আপনি হায়াতে মুবারকা মে আদা ফরমায়ে আর ইন হজো কে দৌরান মুখতালিফ ওয়াকিয়াত পেশ আয়ে। বুজুর্গান দীন আউলিয়া কামিলিন কি আবদাল কি আওতাদ কি আর দিগর হস্তিয়ো কি জিয়ারতে হুই হযরত নে বহুত সে ওয়াকিয়াত বয়ান ফরমা দিয়ে আর আকসর আপনি বয়ান নাহি ফরমায়ে কিউকি আপকি আদত মুবারকা থি কে কোই ভি এসা ওয়াকিয়া কে জিসমে লোগ ইয়ে সোচে কে ইয়ে নাম ও নমুদ কে লিয়ে শোহরত কে লিয়ে বয়ান কর রহে হ্যায় আপ উসকো বতানে সে গুরেজ করতে থে। ওয়াকিয়াত হামে ইস তরহ পতা চলে কে জো লোগ উন আসফার মে আপকে সাথ থে, হজো কে দৌরান আপকে সাথ থে, ইয়া কবি আপনে মহফিল মে বৈঠ কর ইয়া আপনে মুরিদিন মে বৈঠ কর ওয়াকিয়াত বয়ান ফরমায়ে তো উস তরহ ইয়ে ওয়াকিয়াত হাম তক পৌঁছে। সবসে পহলা ওয়াকিয়া আপকে পহলে হজ মে পেশ আয়া জো বড়া আজীব ও গরীব হ্যায় আর সুননে আর ইয়াদ রাখনে কে কাবিল হ্যায়। ইসে ইয়ে ভি পতা চলেগা কে বুজুর্গান দীন আউলিয়া কামিলিন কিস তরহ আপনে মুরিদিন মুতাকিদিন মুতাওয়াসসিলিন কি মদদ ফরমাতে হ্যায়। হযরত কুতবে রব্বানি আবু মখদুম শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ তাহির আশরফ আল আশরফি আল জিলানি নবর আল্লাহ মরকদহু নে 1961 মে বিসাল ফরমায়া আর 1962 মে হযরত আশরাফুল মশাইখ রহমতুল্লাহ আলাইহি নে পহলা হজ আদা ফরমায়া। হযরত খুদ ফরমাতে হ্যায় কি জব মে হজ কে লিয়ে রবানা হুয়া আগরচে হজ কে তমাম মসাইল আর দিগর মালুমাত সব মানে হাসিল কর লি থি লেকিন কিউকে পহলা হজ থা ইসলিয়ে দিল মে ইয়ে ডর থা কি এসা না হো কি কোই চিজ রহ যায়ে কোই রুকন ছুট যায়ে ইসলিয়ে ইহি সে দুয়া করতা হুয়া গয়া। জব ওয়াহা পর পৌঁছে তো উস জমানে মে ইয়ে গ্রুপ কা সিলসিলা নাহি থা জিস তরহ আজ গভর্নমেন্ট কি তরফ সে গ্রুপ বন্দি হোতি হ্যায় আর উন গ্রুপো কি তালিম তরবিয়ত কি জাতি হ্যায়। উলামায়ে কিরাম হজ কে মসাইল বয়ান করতে হ্যায় খিতাবাত করতে হ্যায় ইয়ে চিজে উস জমানে মে নাহি থি। লোক আপনে আপনে তৌর পর হজ কে মসাইল বয়ান করতে থে এক দূসরে কো বতাতে থে কিতাবে সাথ লে জাতে থে। হযরত আশরাফুল মশাইখ রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাতে হ্যায় কি কিউকি মেরা পহলা হজ থা আর কোই জাননে ওয়ালা ভি সাথ নাহি থা আর ইয়ে ভি খদশা থা কি কোই রুকুন কোই এসি চিজ মুঝসে না রহ যায়ে কি জিসসে হজ মুকম্মল না হো। ইয়ে তমাম চিজে পেশে নজর থি তো ফরমাতে কি জাহাজ মে মুঝে এক সাহেব সে মুলাকাত হুই জো ইন্ডিয়া কে রহনে ওয়ালে থে আর ওয়হি সে তাল্লুক উনসে রাহা থা আর হামারে পুরে খানদান কো জানতে থে। উনোনে দেখা আরে হযরত আপ ইয়ে তো বহুত আচ্ছা হুয়া কি আপ হজ মে হামারে সাথ হোঙ্গে আপ এসা করেন কি হামারে গ্রুপ মে আ জায়ে ইসলিয়ে কি হামনে 8-10 আদমিও কা এক গ্রুপ বানায়া হ্যায় হাম সব এক সাথ রহেঙ্গে এক সাথ খরচা করেঙ্গে এক সাথ জাহাঁ ভি জানা হো জায়েঙ্গে তো ইসমে ভি আকসর লোক এসে হ্যায় কি জো পহলি মর্তবা যা রহে হ্যায় আকসর ও হ্যায় কি জো হর সাল জাতে হ্যায় তো উনকি ওয়াজহ সে অর লোগোঁ কো ভি ফায়দা হোগা। হযরত আশরাফুল মশাইখ রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাতে হ্যায় কি মানে সোচা কি ইয়ে তো বহুত আচ্ছি বাত হ্যায় ইয়ে লোক মেরে জাননে ওয়ালে ভি হ্যায় আর মেরা পহলা সফর হ্যায় মে উনকে সাথ হো গয়া। হজ সে কবল হরম মে বৈঠে থে और वो तमाम अफराद जो एक ग्रुप की सूरत में थे वो भी आगे पीछे वहीं हजरत के कुर्ब जवार में बैठे थे। हजरत फरमाते हैं कि मैं अपने वज़ाइफ पढ़ने में मशगूल था कि उन लोगों ने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी हरम में बैठकर। एक ने कहा कि यार ये हमारा पहला हज है, हम जाएंगे, लोगों को तोहफे देने होंगे और यहाँ का सबसे बड़ा तोहफा आबे जमजम और खजूर है, तो खजूरें भी लेनी है, इसके साथ साथ टोपियां तस्बियां जो आमतौर पर लोग लाते हैं वो भी लेनी है। तो हम ये 8-10 आदमी हैं बल्कि इससे ज्यादा हैं, तो ऐसा करते हैं कि अभी ये सब मालूम कर लें कि किसको कितनी खजूरें चाहिए, कितना आबे जमजम चाहिए, कितनी टोपियां और तस्बियां चाहिए, तो हम थोक के हिसाब से वो सब चीजें ले लेंगे, यानी हर एक से पूछकर उसको लिख लें और फिर कुल जितनी भी हों एक साथ ले लें और बाद में उस पैसे को तकसीम कर दें। एक साथ लेने में ये फायदा होगा कि हमें कम कीमत पर वो चीज दस्तियाब हो जाए। तो सबसे पूछ रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि हजरत आपको कितनी खजूरें चाहिए, कितने किलो खजूरें आप लेके जाएंगे, टोपियां तस्बियां आपको किस तादाद में चाहिए। हजरत फरमाते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि मैं भी इनको बताऊं और कहूं कि भाई मेरा भी पहला हज है, जाहिर मुरीदीन मुतकदीन मुतवसलीन है। अचानक मैंने देखा कि सामने से वालिद गिरामी हजरत कुतब रब्बारी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ला रहे। मैंने उनको देखा तो एकदम मैं हैरान हुआ कि ये कैसे आ गए। अंदाज वही था, नीला तैबन चिकन का कुर्ता, सफेद टोपी, हाथ में पीले रंग की तस्बीह, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बावकार तरीके से वो आए। और फरमाते हैं कि मेरे बिल्कुल जहन में ये नहीं आया कि इनका इंतकाल हो चुका है, यानी ऐसा महसूस हुआ कि ये बिल्कुल हयात हैं और सामने से चलते हुए आ रहे। वो आए और आकर मेरे दाएं जानिब बैठ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या तुम्हें दुनियावी ख्यालात यहां पर आ रहे हैं, ये सारे लोग ये सब दुनियादार हैं, ये राहे सुलूक की मंजिल है, यहां पर फूक फूक के कदम रखना है, खबरदार कोई दुनियावी ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए, जो कुछ तुम्हें पढ़ने के लिए बताया गया उसे निहायत खुशू और खुजू के साथ पढ़ते रहो, इनको छोड़ दो, ये जो कुछ कर रहे हैं करने दो, तुम्हें इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। फरमाते हैं ये कहा और उसके बाद इसी तरह उठे और चलते हुए चले गए और हरम से बाहर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि उनके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि इनका तो विसाल हो चुका है, ये तो रूहानी तौर पर आए हैं। बस फिर क्या था कि मेरे एकदम तबीयत में ही तब्दीली पैदा हो गई, कैफियत ही बदल गई। और जब उन्होंने पूछा कि आपको कितनी टोपियां चाहिए, कितनी तस्बियां चाहिए, खजूरें, आबे जमजम, दीगर चीजें, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हज के बाद देख लूंगा, आप लोगों को जो कुछ लेना है आप ले लें। और उसके बाद मैंने बिल्कुल ख्यालात उधर से हटाकर निहायत खुशू व खुजू के साथ पढ़ना शुरू किया, तवाफ करता रहा, हर नमाज के बाद पढ़ता रहा, यहां तक कि 1.25 लाख अस्तगफार हरम शरीफ में मुकम्मल की पहले हज में। उसके बाद हज का जमाना आ गया, मीना, अरफात, मुजलफा, जिस तरह के तमाम अराकीन अदा किए जाते हैं, सब कुछ हुआ। यहां से फारिग होकर फिर मदीने तय बहादरी हुई सरकार की बारगाह में, और वहां पर 1.25 लाख दुरू शरीफ मुकम्मल किया मवाजे शरीफ में। हजरत फरमाते हैं कि जब 1.25 लाख दुरू शरीफ मुकम्मल हुआ तो मैंने देखा कि हजरत वालिद गिरामी कुतबे रब्बानी फिर सामने से तशरीफ ला रहे, वही नीला तैबन चिकन का कुर्ता, सफेद टोपी, हाथ में पीले रंग की तस्बीह, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए। अब मैं डर गया कि शायद मुझसे फिर कोई गलती हो गई, जो ये मुझे तंबीह करने के लिए आए हैं, वहां भी गलती हुई थी तो वहां भी तशरीफ लाए थे, अब ऐसा ना हो कि यहाँ कोई ऐसी गलती हो गई हो। तो मैं बड़े अजीब आलम में, अजीब कैफियत में बैठा था कि वो मेरे करीब आए और आकर बिल्कुल मेरे बराबर बैठ गए और अपना हाथ उन्होंने मेरी कमर पे रखा और फरमाया मुबारक हो, तुम्हारा हज कबूल हो गया, मैं अभी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा हूँ और सरकार ने यह फरमाया है कि इनको बता दो कि इनका हज कबूल हो चुका। फरमाते हैं कि मैंने ये सुना तो खुशी में मेरी आंखों से आंसू निकल आए, और उसके बाद वो इसी तरह उठे चलते हुए वो चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि रूहानी तौर पर ये आए थे। अब आपने देखा कि एक बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन किस तरह अपने शहजादों की, अपने मुरीदीन की, अपने मुतकदीन की मदद करते हैं। हज़रत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर वो मुझे तंबीह ना करते तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ मिल जाता, हो सकता है कि उन्हीं के साथ गुफ्तगू करने लगता और वो इबादत रियाजत रह जाती। लेकिन हजरत ने बर वक्त तंबीह फरमाई, तमाम ख्यालात जहन से निकल गए। वहाँ पर सवा लाख इस्तग़फ़ार मुकम्मल की, मदीने तैयबा में सवा लाख दुरूद शरीफ मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें मुकम्मल भी हो गई, हज की कबूलियत की बशारत भी मिल गई और मैं तमाम नेमतें लेकर वापस पाकिस्तान आ गया। इससे ये पता चला कि अगर मुरीद का ताल्लुक शेख के साथ मजबूत हो, मुस्तहकम हो, तो शेख ऐसे मकामात पर ज़रूर ज़रूर अपने मुरीदीन की मदद फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने शेख के साथ अपना ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम रखें। यह हजरत के पहले हज का वाकया है। इसके बाद मुख्तलिफ हजों में मुख्तलिफ वाकयात पेश आए, गालिबन दूसरे या तीसरे हज का वाकया है। हजरत के एक मुरीद थे जो बड़े अकीदतमंद, मोहब्बत करने वाले। जब हजरत हज के लिए तशरीफ ले गए तो मीना में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा करें कि आप हमारे कैंप में आ जाएं। आपने फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि हमारा कैंप बहुत बड़ा है, खाने पीने का कोई मसला नहीं है, एक पूरा ग्रुप है। हजरत ने मना भी किया लेकिन उनका नहीं, आप मेरे साथ आएं। और हजरत का सामान ज़बरदस्ती लेकर अपने कैंप में रख दिया। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनके कैंप में चला गया। सिर्फ कुछ देर मैं रहा तो मैंने देखा कि वहाँ अजीब कैफियत थी। नौजवान जो थे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इबादत का, पढ़ने का किसी को ख्याल नहीं था। हाँ इतना था कि नमाजें पाबंदी से पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद दुनियावी गुफ्तगू में, सियासी गुफ्तगू में, दीगर चीज़ों में लग जाते थे, एक दूसरे के साथ मजाक उड़ाते थे। तो मेरी पढ़ाई में, वजीफे में खलल पड़ता था। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ऐसा है कि आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं किसी और जगह चले जाऊँ। उनका नहीं हजरत, आपको यहीं रहना। मैंने कहा नहीं, मसला ये है कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, ये सारे नौजवान जो हैं ये मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो मैं खुद कहीं और मैं चला जाता हूँ, आप लोग आराम से रहें। ये कहा और मैंने अपना बैग उठाया और मैं वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन अब जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो जिस कैंप में जाता हूँ जगह फुल है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि यहीं से ग्रुप बन जाएं और ट्रैवल एजेंट या कारवान वाले जो हैं वो अपने ग्रुप के साथ ठहराएं, ऐसी कोई सूरत उस ज़माने में नहीं थी। इंडिविजुअल तौर पर लोग जाते थे, या मौलिम होता था तो मौलिम इंतज़ाम कर देता था। अब मौलिम तो दोनों का एक था और हजरत का जो ग्रुप था, जो कैंप था, वो अलग था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ दीगर हजरात शामिल हो गए, उसमें दाखिल हो गए और ठहरने की जगह ना रही। फरमाते हैं कि अब मैं परेशान था कि कहाँ जाऊँ। कि हजरत के एक मरीज जो वहीं पर ही जद्दा में जॉब करते थे, वो तशरीफ ले आए और उन्होंने आकर हजरत को देखा और कहा फिक्र ना करें। खेमों की एक कतार इस तरफ जा रही थी और एक कतार उस तरफ, और बीच में एक कोना सा बन गया था। तो मौलिम ने वहाँ पर लाकर एक ड्राम रख दिया था कि लोग इसमें कूड़ा डालें, क्योंकि पहला दिन था इसलिए कूड़ा वगैरह उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो इन साहब ने किया कि वो ड्राम अपने कंधे पे रखकर दूसरी जगह जाके रख दिया और वो जो कोना था उसकी थोड़ी सी सफाई की। मौलिम से कहा कि दो कन्नाते मुझे चाहिए, उसने दे दी। एक कन्नात उन्होंने ऐसे बांध दी और दूसरी ऊपर डाल दी, तो वो एक हुजरे की सूरत बन गई। कहा हुजूर आप यहाँ पर क़याम फरमा रहे। हजरत ने फरमाया ठीक। आपने अपना मसल्ला बिछा लिया, पढ़ने के लिए बैठ गए। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर क्योंकि मैं यहाँ ठहर नहीं सकता और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाज़त नहीं है कि जो यहाँ के एम्प्लाई हैं वो हज करें, इस साल हम लोगों पर पाबंदी है, तो लिहाजा मैं चंद फ्रूट कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको दे जाता हूँ, आप वो इस्तेमाल करें। अगर मुझे छुट्टी मिली तो दोपहर का खाना मैं दे जाऊँगा, वरना रात में तो ज़रूर ज़रूर मैं आकर आपको खाना दूंगा। आपने फरमाया ठीक है, आप चले जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। उनको गए हुए अभी चंद मिनट ही हुए थे तो आपने फरमाया कि एक साहब आए और उन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने इजाज़त दे दी, वो अंदर आए और आकर सलाम किया, मुसाफा किया और कहा कि जी हुजूर बात यह है कि हम लखनऊ से आए हैं, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में एक बावर्ची भी है और दीगर खुद्दाम भी हैं, हम सब चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, खुद पकाते हैं, खुद खाते हैं, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं, हम चाहते हैं कि आप भी दोनों वक्त बल्कि तीनों वक्त नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये हमारे साथ खाएं। हजरत ने फरमाया कि नहीं, मुझे कोई ऐसी हाजत नहीं है, मेरे एक मुरीद है मुझे दे जाते। कहा नहीं, अगर आपकी मेहरबानी आप इजाज़त दें हम यहीं पर ही खाना दोनों वक्त पहुँचा दें। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने इजाज़त दे दी। अब जब दोपहर का वक्त हुआ और उनका खादिम ट्रे लेकर आया, वो जो कपड़े से ढकी हुई थी, जब उसको देखा तो मैं हैरान रह गया कि इतना खाना था कि चार आदमी आराम से खा ले। मैंने कहा भाई मैं इतना नहीं खाता, ये सफ़र है, दूसरे इबादत भी करनी है। कहा नहीं हमें नहीं पता, आप जितना खाए खाएं, बाकी छोड़ दें। फरमाते कि उसमें से मैंने खाया, दोनों वक्त उनकी तरफ से खाना आता और किस्म किस्म के खाने, नई नई किस्म के खाने, जो बावर्ची उनके साथ था पकाता था उसके हाथ में बड़ी लज्जत थी। और जब शाम के वक्त ये साहब आए जो हजरत के मुरीद थे, जो वहाँ जॉब कर रहे थे, उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। हजरत ने कहा देखो अल्लाह ताला ने कैसे इंतज़ाम कर दिया, हमें कोई अब फिक्र नहीं है ना खाने की ना पीने की, बल्कि वो कहते हैं इसके अलावा भी कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अगर आपका चाय को दिल चाहे या कोई और चीज़ आप लेना चाहें, आप सिर्फ हमारे खादिम को हुक्म करते हैं, ये काम हो जाए। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, रिजक के दरवाजे खोल देता है, रोज़गार के दरवाजे खोल देता है। हमने उसकी ज़ात पर भरोसा किया, उसने ऐसी जगह से दिया जहाँ हमारा गुमान भी नहीं पहुँच सका। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें ऐसे मकाम से देंगे जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुँच सकेगा। तो इस तरह वहाँ निहायत आराम के साथ वो सिलसिला हुआ। इसी तरह हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के हज का एक और वाकया है कि आप फरमाते हैं कि हज बैतुल्लाह से फारिग होकर मदीने तैयबा पहुँचा तो मुझे एक जुब्बे की ज़रूरत थी, यानी अरबी जुब्बा हजरत देबतन फरमाते थे जलसों में भी, महाफिल में, जुमे की नमाज में, ईदैन में। तो फरमाते मैंने सोचा कि काले रंग का जुब्बा मैं ख़रीद लूँ, लेकिन पैसे मेरे पास ख़त्म हो गए। और उमूमन ये होता है कि हुज्जाज जब मदीने तैयबा पहुँचते हैं तो क्योंकि हज से वापसी का मौका होता है कि वहाँ सलाम करके फिर वापसी होती है, 8 दिन के बाद अक्सर लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो हजरत फरमाते कि मेरे पास सिर्फ 100 या 150 रियाल थे, मैंने खजूरें वगैरह ले ली थी, और तो मैंने ये सोचा कि एक जुब्बा भी ख़रीद लूँ, लेकिन जब उसकी कीमत मालूम की तो उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और अभी चंद दिन भी बाकी थे, दिन वहाँ गुजारने थे तो वहाँ भी किराए में और वैसे भी पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि किससे मांगूँ, किससे कहूँ। फिर ख्याल आया कि चलो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करूँ। अब देखिए हजरत का ताल्लुक बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना था, इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मवाजे शरीफ हाजिर हुआ, हाथ बांध कर बा अदब सरकार की बारगाह में सलातु सलाम का नजराना पेश किया और उसके बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मुझे एक काले रंग का जुब्बा चाहिए। और उस पर जो उसकी कीमत थी, कहा कि ये इतनी कीमत है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वो खरीद लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ना मैं किसी से कर्ज मांगूँ ना किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान हो और जुब्बा भी मैं ले लूं। आप कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दें कि कोई आकर खुद ब खुद मुझे दे दे और मैं वो जुब्बा खरीद लूं। हजरत फरमाते कि मैंने यह अर्ज की और मेरे दिल को इत्मीनान हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि मेरा काम हो गया। मैंने फिर दोबारा बादब सलाम पेश किया और वहां से वापस रवाना हुआ। अभी मैं कुछ ही दूर चला था कि मेरे वालिद गिरामी खुतब रब्बानी हजरत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद जो बंबई में रहते थे और वहां से हज के लिए आए थे, उन्होंने मुझे दूर से देखा और दौड़ते हुए आकर मेरे लिपट गए और कहा, आप तो मेरे शहजादे हैं, मेरे पीरजादे हैं। कितने दिन के बाद मुलाकात हुई और हकीकत भी ये थी कि काफ़ी अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और उतने ही रियाल यानी जितने का जुब्बा था, जो कीमत मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की थी कि सरकार इतने रियाल का ये जुब्बा है, आप यकीन करें कि हजरत फरमाते कि मैं हैरान रह गया, उतने ही रियाल उन्होंने बड़ी आजजी इनकसारी के साथ और मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ मुझे पेश किए कि ये नजराना आप मेरी तरफ से कबूल कर लें। और जब मैंने उनको रोका तो उनका नहीं, आप मेरे पीरजादे, आप मेरे शहजादे हैं, इतने दिन के बाद मुलाकात हुई है, ये नजराना आप कबूल कर लें। फरमाते हैं कि ये कहा और उसके बाद वो आगे बढ़ गए और मैं दोबारा फिर वापिस मवाजे शरीफ फिर मैं हाजिर हुआ। दोबारा बा अदब सलाम अर्ज किया और सरकार का शुक्रिया अदा किया कि आपकी निगाह करम आपने ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया कि ना मुझे कर्ज लेना पड़ा, ना किसी का एहसान हुआ, बल्कि देने वाले ने नहायत अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशामद करके उसने मुझे दिया। ये है निगाह करम नबी पाक अलैहिस्सलाम। हजरत फरमाते हैं कि फिर मैं मार्केट गया और मैंने उतने का वो जुब्बा लिया, बल्कि उस कीमत से कम में मुझे वो मिल गया, बाकी पैसे भी मेरे पास बच गए और नहायत आराम के साथ ये सफ़र मुकम्मल हुआ। इससे ये पता चला कि अगर तलब सादिक हो तो अता ज़रूर होता है, लेकिन शर्त यह है कि तलब सादिक होनी चाहिए और दिल में यकीन होना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं और इंतज़ाम भी फरमा रहे हैं, मदद भी फरमा रहे हैं, दस्तगिरी भी फरमा रहे हैं। हजरत अशरफ अल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह अपने हज के वाकयात आम तौर पर बयान नहीं फरमाते थे, जिस तरह के आम लोगों का होता है कि कोई वाकया हुआ सब के लोगों में बैठकर बयान कर दिया, हमने ये किया, हमने ये देखा। हजरत की आदत नहीं थी, छुपाते थे। एक मरतब ऐसी महफिल में बैठे थे, जिक्र निकला तो आपने बयान फरमा दिया और हमने उसे नोट कर लिया। हजरत अशरफ अल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हरम में बैतुल्लाह के पास बैठा था, मैंने देखा कि कुछ लोग अचानक हरम में दाखिल हुए, सफेद अमामा, सफेद लिबास यानी कुर्ता, और जो सबसे आगे थे उनकी सफेद दाढ़ी थी और उनके पीछे जो थे उनकी सिया दाढ़ी थी, लेकिन सब एक दूसरे के कंधे पर इस तरह हाथ रखे हुए थे। एक साथ हरम में दाखिल हुए और उन्होंने तवाफ शुरू किया। हजरत फरमाते कि मैं बड़े गौर से उनको देखता रहा, जब मैंने गिना तो वो 40 थे। मैं समझ गया कि ये 40 अब्दाल हैं जो एक साथ तवाफ करने के लिए आए हैं। फिर मैंने एक और हैरान कन मंजर देखा कि उनको देखते हुए जब उनके कदमों पर नजर पड़ी तो वो 1 या 2 फीट जमीन से बुलंद थे, यानी ऐसा महसूस होता कि उनके लिए एक अलग से कोई सतह जमीन है, उस पर वो लोग चल रहे, यानी आम लोगों से बुलंद नजर आ रहे और कोई उनको नहीं देख रहा। हजरत अशरफ अल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि इनसे मुलाकात की जाए, तो जब मैंने देखा कि इनके 7 चक्कर मुकम्मल हो गए और अब ये जाएंगे तो मैं उसी मकाम पर आकर खड़ा हो गया जहां तवाफ मुकम्मल होता है, यानी हजरे अस्वद के करीब। थोड़े फासले पर। जब वो साहब आए, मैंने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा, हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब हमने हाथ मिलाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा ही हाथ आपस में मिले हुए, यानी उनका हाथ मेरे हाथों के दरमियान महसूस नहीं हुआ, सिर्फ इतना महसूस हुआ जैसे रुई होती। उसके बाद उन्होंने एक कदम नीचे रखा और गायब हो गए। दूसरे साहब आए, उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने कदम नीचे रखा, गायब हो गए। तीसरे साहब आए, इसी तरह 40 के 40 अब्दाल हजरत ने सबसे मुसाफा फरमाया और सब एक कदम नीचे रखते थे और गायब हो जाते थे। ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कोई जीना है, कोई सीढ़ी है जिसमें वो नीचे उतर रहे। इससे ये पता चला, न जाने कितने अब्दाल, औतात, अक्ताब, अगवास, नुकबा, नुजबा, ये जितने भी बातनी तौर पर ओहदे, मनासिब हैं, मरातिब हैं, इन पर फाइज नफूस कुदसिया कितनी तादाद में वहां पर आते होंगे, लेकिन हर किसी को वो मंजर नजर नहीं आ। आंख वाला तेरी जोगन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या ए नजर क्या देखे। कितने लोग जाते हैं तवाफ करके आ जाते हैं, इबादत करके आ जाते हैं, यकीनन उनका हज, उनकी इबादत, उनके तवाब, ये सारी चीज़ें कबूल होती हैं, लेकिन वो मनाजिर जो अहलुल्लाह देखते हैं, जो बातनी नज़र रखने वाला देखता है, वो ज़ाहिरी नज़र रखने वाला नहीं देखता। हज़रत अशरफ़ुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहु की हयात मुबारक में ऐसे बेशुमार वाक़यात खुसूसन हज के मौके पर पेश आए। हम गुज़िश्ता नशिस्तों में भी उनमें से बहुत से वाक़यात पेश कर चुके हैं, और बहुत से वाक़यात ऐसे भी हैं जो इस वक्त हमारे जहन में ना हों, और ऐसे भी हैं जो तहरीर में नहीं आए, लेकिन हमने कोशिश की है कि अक्सर वाक़यात को तहरीर कर दिया जाए। एक किताब वाक़यात व हक़ाइक़ फ़ी हयात अशरफ़ुल मशाइख़, यह हज़रत के यौम विसाल पर यह किताब शाये हुई थी, और उसमें अक्सर वाक़यात शामिल कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो शामिल नहीं हुए। अगर सिर्फ हज के वाक़यात ही बयान किए जाएं और सिर्फ हज के वाक़यात में जिन बुज़ुर्गान दीन से मुलाकात हुई, अब्दालों से मुलाकात हुई, अक्ताब से मुलाकात हुई, गौस पाक के नायबीन से मुलाकात हुई, इसी तरह दीगर रूहानी तौर पर जिन जिन शख्सियात से मुलाकात हुई, अगर उन सब को तहरीर किया जाए तो पूरी एक मुकम्मल किताब बन सकती। लेकिन वही बात है कि हजरत ने अपने आप को छुपाया, अपने मकाम और मर्तबे को जाहिर नहीं किया। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वहाँ बैठ कर अब्दालों की ज़ियारत कर ले, उनसे मुलाकात कर ले, बुजुर्गान दीन से रूहानी तौर पर मुलाकात कर ले, उसका अपना रूहानी मकाम और मर्तबा क्या हो। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल-जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहु के मरकद मुबारक पर, और उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। उनकी तरह इस्तेकामत, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, चिल्ला कशी और मामूलात पर इस्तेकामत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।